प्यार का सागर, ज्ञान और अज्ञान। तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भगत लोग महिमा किसकी करते हैं, और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो। रात दिन का फर्क है, वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते हैं, इतना उनका प्यार नहीं है। प्यार उनका क्यों नहीं है? महिमा गाते पर प्यार नहीं है, क्यों प्यार नहीं है? क्योंकि पहचान नहीं है। तुमको बाप ने पहचान दी है। क्या पहचान दी विजय? मैं प्यार का सागर हूँ, तुम्हें आया हूँ प्यार का सागर बनाने। सुना क्या पहचान मिले? मैं प्यार का सागर हूँ, मैं आया हूँ प्यार का सागर बनाने। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता। सुषमा, प्यार का सागर कितना प्यारा लगता। इसलिए ये प्रैक्टिकल सबूत है, इसलिए ये भी प्रैक्टिकल सबूत है। कौन सा सबूत है? वोकल कि वहां सतयुग में कितना सबका एक दूसरे से प्यार रहता। प्यार का सागर, प्यार का सागर बनाता है, उसका सबूत है सत्युग। अच्छा, ये तो यहां तुम आए हो प्यार सीखने, एक दूसरे से प्यार करना। प्यार करना माना बाकी नहीं रहना, कहीं पता नहीं ये भी समझ लेते। प्यार का अर्थ है, प्यार का अर्थ है, बहुत अच्छा अर्थ है, बहुत बताओ। प्यार का अर्थ है, बोलो, प्यार का अर्थ है खीर खन रहना, ये भी राइट। दूसरा, प्यार का अर्थ है कभी किसी से विरोध न रखना। प्यार का अर्थ ही है कि प्यार रहा तो विरोध रहेगा ही नहीं ना। प्यार का अर्थ है कभी किसी से विरोध न करना। अंडरलाइन करते जाओ, फिर हर एक आज की मुरली पर चार्ट लिखे, हर एक लिखो। मैं कहती हूँ आज की मुरली सब लिखो, और फिर उसी के बाद में आज की मुरली का सब चार्ट लिखे। का भट्टी का क्लास है ये। तुम यहां से किसके साथ भी, प्यार का अर्थ है कि किसके साथ भी विरोध न होना चाहिए। पूछो, थोड़ा भी विरोध है वो चार्ट में लिखो, किसके साथ में भी सूक्ष्म विरोध रहता, मन सा चेक करना। बोलती जाती चार्ट लिखते रहना। जिसको बाबा लून पानी कहते हैं, विरोध माना लून पानी होना। लून पानी नहीं समझा? बाबा कई बार कहता है लून पानी माना वो खारा पानी हो जाना। सागर का खारा पानी पिया नहीं जाता, नंदी का मीठा पानी पिया जाता। लून पानी होना अर्थात, फिर और सुनो, अंदर में किसके प्रति नफरत होना। नफरत करने वाला गोया, बहुत कड़ा शब्द है, नफरत करने वाला गोया नर्कवासी होना। अंडरलाइन करो शब्द। तुम्हें बाबा ने कहा है कभी किसके लिए भी अंदर में नफरत न होनी चाहिए। क्यों 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 नहीं होनी चाहिए? क्यों? तुम सभी एक प्यार के सागर के बच्चे भाई बहन हो। तो बाबा ने कहा अंदर में किसके लिए भी नफरत नहीं होनी चाहिए, नफरत करने वाला गोया नरकवासी बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम सब है एक बाप प्यार के सागर के बच्चे भाई बहन। भाई भाई तो होंगे शांति धाम में, यहाँ तो तुम सब भाई बहन हो, संबंध ही नहीं है, वहां तो है ही भाई भाई, ओम शांति है। नहीं पता ही नहीं, वहां तो है ही ओम शांति, ये है ही यहाँ, क्योंकि प्यार के सागर के बच्चे तुम सभी भाई बहन हो। यहाँ तो तुम आए हो कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने, तुम इस समय सब हो कौन, ईश्वरी संतान। ईश्वरी संतान का आपस में बहुत लव होना चाहिए, ईश्वर की महिमा गाते हो कि तुम ज्ञान का सागर हो, तुम प्रेम का सागर हो, तुम सुख का सागर हो। वश्य 21 जन्मों के लिए सुख देते, वैसे हम सबको सुख देते, इसलिए अगर तुम मेरे बच्चे, फिर अंडरलाइन करो, अगर तुम मेरे बच्चे सुख के सागर के बच्चे मेरे समय कार्य नहीं करते, बाप के मददगार नहीं बनते, अर्थात बाप के समान एक दूसरे को प्यार नहीं करते, फिर अंडरलाइन, तो विपरीत बुद्धि हो, ऊपर कहा नरकवासी हो, नीचे कहा विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि चलते चलते विनशंति होता, इसको दीदी क्या कहे, वो है वरदान, ये है सूक्ष्म का श्राप। विपरीत बुद्धि चलते चलते विनशंति हो जाती, विपरीत बुद्धि माना आसुरी असुरों का काम करना। विपरीत बुद्धि है विनशंति है, और वो असुरों का काम। बाबा ने पूछा तुम कौन हो, बाबा ने पूछा तुम कौन हो, तुम हरेक अपन को ईश्वरी संप्रदाय कहलाते हो, ईश्वरी संप्रदाय अगर एको एक दो को दुख देता तो वो असुर कहा जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमत है कि किसको दुख नहीं देना है, तुम हो ही दुख हरता सुख करता के बच्चे, तुम्हें कभी सूक्ष्म में भी संकल्प नहीं आना चाहिए किसको दुख देने का, ख्यालात भी कब नहीं उठना चाहिए, अगर वो ख्यालात भी आता तो आसुरी संप्रदाय कहेंगे न कि ईश्वरी संप्रदाय। क्यों वो है दे अभिमानी, ऐसा दुख देने वाला कब याद की यात्रा में रह नहीं सकता, जिसकी ख्यालात दुख देने की नफरत की विरोध की रहेंगी वो याद की यात्रा क्या करेगा। याद की यात्रा बगैर कल्याण होएगा ही नहीं, माना उनका अकल्याण। तुम्हें वर्षा देने वाले प्यार के सागर बाप को याद जरूर करना है, तब ही विक्रम विनाश होगा। आधा कलप तो तुम एक दो को दुख देते आए हो, अब तुम्हें दुख नहीं देना है। बाबा कहता एक दो में अगर लड़ते हो, तंग करते हो, गुस्सा करते हो, आसुरी संप्रदाय गिना जाएगा। लड़ते हो, तंग करते हो, गुस्सा करते हो तो आसुरी संप्रदाय गिना जाएगा। भल बच्चे कहते बाबा पुरुषारथी हूं, संस्कार है, तो भी बाबा कहते तुम्हें तो प्रतिज्ञा करनी है कभी दुख नहीं देना है। कोई कहते क्या करूं पुरुषारथी हूं, बाबा कहते नहीं प्रतिज्ञा करो हमें दुख देना नहीं। इसलिए बाबा कहते अपना चार्ट रोज रखो कि किसको भी दुख देने के ख्यालात तो नहीं उठे। चार्ट रखने से मालूम होगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन ही है। बाबा सदैव कहते हैं कब किसको दुख न दो, बस यह मंत्र सदा याद रखो। दीदी ये मंत्र याद हर एक कर लेवे तो सच में संगम स्वर्ग मिला। बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है कि तुम्हें निंदा उस्तति मान अपमान सर्दी गर्मी सब हमको सहन करना है, न कि इसीलिए तुम किसको दुख दो। जब सहन करना है तो फिर तो सवाल ही नहीं है ना, ये मेरी निंदा क्यों करता, अपमान क्यों करता, सहन करना है ना। अगर कोई एक शब्द कहता भी है तुम्हें डायरेक्शन है, तू शांत रहो, तू न बोल। ऐसे नहीं एक ने एक शब्द बोला तो तू उनको उत्तर में दो वचन बोलो, नहीं तुम्हें शांत रहना। अगर कोई ने दुख दिया भी है तो तू उनकी रिपोर्ट करो, बाप समझाएगा, तुम नहीं बोलो। बच्चों को हक नहीं एक दो को कुछ कहने का, तुम अपने हाथ में ला नहीं उठा। कुछ भी बात है बाप को रिपोर्ट करो। गवर्नमेंट का भी कायदा है कोई एक दो को घूसा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते पर घूसा नहीं मार सकते। लॉ गवर्नमेंट के हाथ में है, तुम भी ऑलमाइटी गवर्नमेंट के पास हो, तुम हाथ में ला नहीं उठाओ। बाबा कहते ये तो है ही तुम्हारा ईश्वरी परिवार, ये तो तुम्हारा अपना घर है, ये ईश्वरी घर भी है, ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट का भी घर है। इसलिए इस सुप्रीम कोर्ट में कचहरी रोज कर सकते हैं, परंतु कचहरी भी करेंगे तो भी कई बच्चे समझेंगे नहीं। शिव बाबा आर्डर करते हैं, शिव बाबा ने ये डायरेक्शन दिया है, हमें समझो शिव बाबा हमें ये सुनाता है। ऐसे कब नहीं समझो कि ब्रह्मा बाबा सुनाता है, हमें समझो शिव बाबा ही समझाता, उनको ही हमें याद करना है। ये शिव बाबा का रथ है, ये शिव बाबा तुम्हें ज्ञान सुनाता है, बाबा तुम्हें सत्व प्रधान बनाने का रास्ता बताता जो गुप्त है। जो भी डायरेक्शन निकलता समझो शिव बाबा का डायरेक्शन है, तो तुम सेफ रहेंगे। ब्रह्मा को समझेंगे तो तुम गफलत करेंगे, शिव बाबा समझेंगे तो सेफ रहेंगे, ब्रह्मा को देखेंगे तो गफलत करेंगे। तुम सेफ किस में रहेंगे? जब समझेंगे शिव बाबा का डायरेक्शन। तुम बाबा से वर्षा ले रहे हो, तुम बाबा से मिलने आते हो, तुम्हें उस बाबा के साथ कितना रिगार्ड और रॉयल्टी से चलना है। तुम बच्चों को बाबा ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाने आया है, फिर तुम फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड तो बनेंगे ना। सूर्यवंशी न बने तो फिर चंद्रवंशी बनना पड़ेगा, इसलिए बाबा खबरदार कहता कि दास दासी मत बनो। तुमको तो यहां बहुत दैवी गुण धारण करना है। आसुरी चलन बिल्कुल ना होनी चाहिए। कई बच्चों में निश्चय नहीं है तो फालतू उल्टे सुलटे प्रश्न कर, एक दूसरे को खराब करते। क्या तुम समझते हो कि बराबर शिव बाबा ही ये बोल रहा है? ऐसे प्रश्न करते एक दूसरे में, क्या बराबर तुम समझते हो कि शिव बाबा बराबर? मुझे अभी तक ऐसा महसूस नहीं होता। बाबा कहते माया का भूत है। ऐसी बातें करने से, माया का भूत आने से, आपस में ऐसी बातें कह देते, आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते तो फिर ऐसे बोलने एक दो में लग पड़ते। इसको कहेंगे आसुरी बातें, जो तुम्हारे मुख से भी कभी नहीं निकलनी चाहिए। बाप कहते हैं तुम हो मेरे मीठे मीठे कौन रूप बसंत बचे। तुम बच्चों के मुख से रतन निकलना चाहिए, तुम हो रूप बसंत। अगर रतन के बदली पत्थर निकलते तो गोया आसुरी बुद्धि वाले थे। नीचे बच्चे गीत सुना, गीत भी है। बाबा कहते बच्चे बाबा प्यार का सागर है, बरोबर सुख का सागर है। ये महिमा शिव बाबा की ही गाई है। तो बाप कहता तुम बच्चों को भी अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करना है। इस याद में अच्छे अच्छे बच्चे भी फेल हो पाते। तुम्हें देही अभिमानी स्थिति में ठहरना है। देही अभिमानी बनेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। परंतु बहुत बच्चे फालतू बातों में टाइम वेस्ट करते हैं। तो फिर ज्ञान की बातें, धारणा की बातें ख्याल में नहीं आती, निकल जाती। बाबा कहते ये कौन समझा रहा है? तुम्हें शिव बाबा समझा रहा है। परंतु गायन है, कहावत है। कौन सी कहावत है? घर की गंगा का मान नहीं होता। घर की चीज का इतना मान नहीं रखते। जैसे घर में श्री कृष्ण का चित्र होगा उसका इतना मान नहीं करेंगे जितना श्रीनाथ द्वारे में जाके दूर दूर उनका मान करेंगे। चीज तो वही है, दर्शन तो वही है, फिर इतना दूर भटकने की क्या दरकार? मंदिरों में जाएंगे, वहां मंदिर में खूबसूरत देखते, ठाठ देखते तो उनसे लव हो जाता। भक्ति मार्ग तो वास्तव में क्या कहे, शिव की पूजा करनी है तो घर में बैठ करो ना, वहां क्यों जाते हो? है तो पत्थर, वो ही लिंग बनाते, पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वो घिस घिस कर लिंग हो जाता, उनमें कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ मिल जाता तो कहते सोने का कैलाश पर्वत है। सोना तो पहाड़ों से ही तो निकलता, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगा हुए भी पत्थर होते जो फिर बहुत अच्छा अच्छा जिसके गोल होते तो वो पूजते बेचते, बहुत दाम मिलता। मार्बल का भी ऐसे होते गिस्सा के बहुत सुंदर बना देते। अच्छा, बाबा ने समझाया, कोई भक्ति मारे वाले को कहो चित्र तो तेरे घर में है, तू क्यों बाहर भटकते हो? बाबा कहा अगर कोई भक्ति वाले को ऐसे कहो तो वो भी बिगड़ गए। बाप खुद कहती हे मीठे बच्चे, तुमने आधा कलप कितना पैसे बर्बाद किए, कितना मैंने धन माल दिया, फिर भी कहेंगे कि ड्रामा, ये भी पार्ट था, धक्का खाना पड़ा। अब तुम्हारा है ये ज्ञान मारी, ज्ञान से सदगति होती, बाप सबकी सदगति करते फिर क्या चीज है? जिससे तुमने दुर्गति को पाया अब तुम सदगति को पा रहे हो। ज्ञान और भक्ति ये भी ड्रामा के अंदर खेल है। बहुत कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग, परंतु अर्थ नहीं समझते। शंकराचार्य ने भी कहा भगवान आकर कहे शास्त्र न पढ़ो तो भी हम नहीं मानेंगे, भक्ति का कितना मान है। ज्ञान में आने बाद कई बच्चे अगर धंधे आदि में घाटा पड़ते तो ज्ञान को छोड़ करके देवियों के पास जाते हैं कि देवी जी हमें वर दो तो धंधा अच्छा हो। बाबा कहता है ये भी संशय बुद्धि है जो हाथ छोड़ देता है। यहाँ तो ये कोई बात आशीर्वादों की बातें हुई नहीं। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करेंगे कृपा करो हमारा बच्चा ठीक हो जाए। भक्ति में अल्पकाल का फल मिलता, भावना का अल्पकाल लिए फारा मिलता। कोई हनुमान की कोई गणेश को याद करते तो उनको भी साक्षात्कार होता, समझते बस साक्षात्कार हुआ तो मुक्त हो गए। परंतु ये थोड़ी जानते हैं हनुमानपुरी व गणेशपुरी कहाँ होती। जहां हम जावेंगे, अब तुम बच्चों को सारी समझ मिली है भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। भक्ति मार्ग आधा कलप से चलता, वो है दुख का रास्ता, ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान से सतयुग की राजाई मिलती, अज्ञान से नरकवासी बनते। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक हैं, परंतु ये किसको पता हो रही है कि हम नरकवासी हैं? जब कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो इन बातों को अभी तुम समझते। अब तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने लिए बाप की श्रीमत से स्वर्ग स्थापन करते। देखो बच्चे, बाप के पास बैठे हो तो ज्ञान की बूंद मिलती ही रहती। थोड़ा भी ज्ञान किसी ने सुना तो कहा जाएगा स्वर्ग में आवेगा। है तो सब पुरुषार्थ पर, समझते है गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जावेंगे। कई लोटे भर करके ले जाते, फिर उनसे रोजाना जाए पानी में दो ड्रॉप मिलाते, स्नान करते, कहते ये तो गंगा जल से स्नान। साधुओं को भी जब जेल में डाला था तो उन्होंने भी गंगा जल मांगा था जेल में, तो सरकार को गंगा जल देना पड़ा। तो बाप समझाते हैं बच्चे मैंने क्या सुनाया। चलते चलते कई बच्चों को माया बहुत जोर से थप्पड़ लगा देती, विक्रम कर लेती। इसलिए कचहरी करो या आप ही अपनी कचहरी करो तो अच्छा ही है। तुम अपने आप को आप ही राज तिलक देते हो तो अपने आप ही जांच करनी है कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। बाप श्री मत देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेगा वो पाएगा। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़ा हो जाना चाहिए, क्यों तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम्हें उनकी सर्विस में सदा मददगार रहना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। जितना जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा, लाठी बनेंगे कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा ये नहीं कहता योग के लिए एक जगह बैठ जाओ, भल चलते फिरते याद करो। तुम्हें ट्रेन में भी तो सर्विस करनी है, कोई भी मिले बोलो आप किसके भगत हो, कोई गुरु भी मिले गुसाई भी तो भी पूछ सकते। तो ऊंचते ऊंच कौन है, ऊंचते ऊंच तो है ही एक बाप। तुम्हें उनको याद करना है, उनसे ही तुम्हें वर्षा मिलेगा। आत्मा को बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते सो भी अल्प काल के लिए, सदा तो कोई वो राजा बनता नहीं। तो बाप कहते हैं ये गारंटी है, वहां ये पता नहीं पड़ेगा, यहाँ तुम्हें पता है कि बाप गारंटी देता है कि तुम्हें मैं 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। ये ज्ञान इस समय ही तुमको मिलता है। तो बच्चे तुम्हें कितना अच्छी रीत पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ न करते हो तो गोया अपने पांव पर आपे ही कुल्हाड़ी लगाते हो। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो तो डर रहेगा, कोई लिखते भी है बाबा देखेंगे तो शर्मावेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता, डर रहेगा। बाबा कहते बच्चे तुम्हें गफलत नहीं करनी है, गफलत छोड़ो नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछारी में ही साक्षात्कार होगा, फिर वार वार रोना पड़ेगा। क्या कलप कलप में यही वर्षा मिलेगा, दास जाए बनेंगे। आगे तो कई बच्चियां ध्यान में जाती थी, बताती थी फलानी दासी है, फिर शक आता था, बाबा ने वो सब बंद करा दिया। पिछारी में तो फिर तुम्हें साक्षात्कार होंगे, साक्षात्कार बिगड़ सजा कैसे मिल सके, कायदा नहीं। बच्चों को बाबा बहुत बहुत युक्तियां भी बताते, मीठे बच्चे तुम्हें कभी गुस्सा नहीं करना, अगर पति मारे गुस्सा भी करे तो भी तुम्हें हर्षित मुख रहना है, न कि लड़ना है। बोलो हाथ जोड़ पांव पड़ती हूँ, मुझे मेहरबानी करके पौतुल रहने दो। बड़े मीठे आवाज से बोलो काम महाशत्रु है इन पर जीत है, काम महाशत्रु है तुम्हें इन पर जीत पहनी है, माया जग जीत जगत जीत बनना। तुम बच्चे अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, तुम्हारे कारण अपौतुर बन नरक में जावे क्या। बहुत प्यार निम्रता से बैठ समझाना चाहिए, मुझे क्यों तू नरक में ढकेलते। ऐसे बहुत बच्चियां हैं समझाते समझाते आखिर पति को वश कर लिया। फिर पति कहने लगा कि हाँ यही मेरी गुरु है, इसने ही मुझे अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए फिर वो गिरते। ये तो है कब जीत कब हार भी होती, तो बच्चों को क्या कहा। मीठे बच्चे, तुम्हें कहा है तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, जो मीठा बनता जो सर्विस करता वही प्यारा लगेगा। भगवान बाप के पास आए हो क्यों? उनकी श्रीमत पर चलने, नक आसुरी मत पर चलने। भगवान बाप के पास आए हो उनकी श्रीमत पर चलने, नक आसुरी मत। श्रीमत पर न चलेंगे तो तूफान लगेंगे और गिर पड़ेंगे। ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं। बच्चे ये कोई पढ़ाई कामन नहीं है, तुमको पढ़ाने वाला कोई कामन नहीं मिला है। और सब सत्संगों में ये बातें नहीं होती, वहां तो कन रस की बातें होती जिसे अलग काल का सुख मिलता है। ये बाप तो तुम्हें 21 जन्मों के लिए वर्षा देने आए हैं। कहा बाप है तुम्हारा प्यार का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। तुम बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो, तो जब ऐसी सेवा करेंगे सबको सुख देंगे तो सुखी होंगे। इसलिए बच्चों को कहा है क्या करो, सदैव अपने पास बैच परा रहे और ये ख्याल रहे कि मुझे ऐसा सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है, मैं ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। किसको दुख तो नहीं दिया? ये रोज अपना चार देखो, कोई आसुरी चलन तो नहीं चला, कोई आसुरी ख्यालात तो नहीं चले। माया ऐसा ऐसा काम कराती जो बात मत पूछो। अच्छे अच्छे बच्चों में भी माया ऐसे प्रवेश करती जो विक्रम करा लेती। कई बच्चे तो सच बताएंगे, कोई सच भी नहीं बताएंगे तो 100 गुना दंड पाएंगे। वो फिर आदत बढ़ती जाती। सावधान भी बाबा करते, सभा में सुनाने से आबरू जावेंगी। बाप कहते हैं आदत छूटेगी। बाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और सभी के सामने बताओ, तो तुम्हारी आधे पाप खलास हो जावे, आदत मिट जावे। सुनावेंगे नहीं, छिपा लेंगे तो करते रहेंगे तो उल्टा श्राप मिलता जाएगा। श्राप है एक बार के बदली 100 बार तुम्हारे से भूल होगी। श्राप का अर्थ है न बताया, सच न बोला तो एक बार के बदली 100 बार करते रहेंगे। बताएंगे तो माफ, न बताएंगे मिट जाएंगे। से एक बार के बदली वो आप 100 बार होगा, ये है श्राप। माना ये एक गुप्त श्राप है, सच न बोलना माना श्राप लेना कि वो एक बार की गलती बल्कि 100 बार। ऐसी ऐसी बातें अंडरलाइन करनी। बाबा कितनी अच्छी राय देते, परंतु कई बच्चे एक कान से सुना दूसरे से निकला, जरा भी असर नहीं पड़ता। ऐसे जो अंदर नहीं धारण करते वो भी समझो अपनी तकदीर को जैसे लात मार। बाबा ने समझाया, अंदर में नहीं धारण किया, सुना और खत्म किया, जरा भी असर नहीं होता। माना कि वो भी अपनी तकदीर को आपे ही लात मारता। दीदी ये भी एक इनडायरेक्टली श्राप है। सुना धारण किया तो ठीक, अगर सुना न सुना तो माना वो भी तो आदत पड़ी ना, तो सुना सुना माना वो आदत नहीं मिटी, न मिटी माना अपनी तकदीर को लात मारा। न समझना न धारण करना ये भी है अपनी तकदीर को लात मारना। वे बहुत नुकसान कारक होते, अंत में उनको पछताना होगा। ये भी क्लास से ट्रांसफर होते तो मार्क्स तो निकलती, ट्रांसफर होने बदली पहले रिजल्ट निकलती। तुम भी अपर क्लास में जाते तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जार जार रोएंगे, फिर क्या कर सकेंगे? रिजल्ट आउट हो गई फिर तो कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर कहेंगे तकदीर में जो था सो ले लिया। बाबा सब बच्चों को खूब सावधान करता, बच्चे कर्मातीत अवस्था अभी हो न सकी, कर्म तो अब अवस्था नहीं हो सकी, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो शरीर छोड़ना पड़े, भल अभी तो किसकी नहीं है। कुछ न कुछ विक्रम करते रहते हो, हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि मैं कोई कर्मातीत अवस्था में हूं। हाँ, नजदीक आने से बहुत ऐसी निशानियां दिखाई पड़ेंगी। सारा मदार भी अब है तुम्हारे अवस्था पर, तुम्हारे अवस्था से ही विनाश का संबंध। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होंगी तो फिर देखेंगे, लड़ाई भी सामने सर पर खड़ी है। समझा? अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों पर याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हमारी एक छोटेपन की कहानी है कि हम तो स्कूल पढ़ती थी, मम्मा और हम सब एक ही स्कूल में थे दोनों, और मैट्रिक पढ़ती थी, दसवीं, जिसको आजकल दसवीं कहते हैं। तो मुझे याद है ये दिवाली के दिनों में छुट्टियां होती है स्कूल की, उन दिनों की बात है कि स्कूल से दिवाली की या दशहरे की छुट्टी थी। तो मैं पहले बाबा को जानती नहीं थी, शायद कब देखा होगा पर मैं जानती नहीं थी, लेकिन बड़े तो जानते थे परंतु मैं कभी देखा नहीं था। हम तो छोटी थी, तो छोटे के कारण तो कोई ऐसे बुजुर्गों को तो बात नहीं होती जानने करने का। अब मेरी कहानी में फिर लौके की भाई, लौके के बाप जो था वो वेद शास्त्र अच्छी तरह से पढ़ा हुआ था, गंगेश्वरानंद का पक्का अनन्य चेला था, और वो वेद शास्त्र पढ़ता था अच्छी तरह, ज्योतिषी था ऐसा मुझे पता है। अच्छा, और परिवार में अगर पूछेंगे तो परिवार में चार लौकिक बहनें थी, तीनों की तो शादी हो गई थी तो घर में। अच्छा, तो ये लोग तो अपने अपने घरों में रहते थे, तो लौकिक घर में अकेली थी। तो वैसे लौकिक बाप को ये सत्संग वगैरह का अच्छा शौक रहता था, उसमें आना जाना पढ़ना वेद शास्त्र उसमें रहते थे, परंतु वो तो बड़े रहते, अपन तो छोटे बच्चे रहे, अपने पढ़ाई में पूरे रहते थे। तो एक दिन की बात है, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। मुझे वो बिल्कुल अभी तक भी वो घड़ी अमृत वेले की अभी तक भी याद है, जो कि 41 वर्षों की पहले की बात है। उस टाइम मेरी उम्र, मैं समझती हूँ, 15 साल की है। तो सवेरे का 4 बजा होगा, 4 बजे का ही टाइम है। तो मैंने सुपन देखा या दृश्य देखा, मैं सोई पड़ी थी, तो मैंने देखा, वो सीन मुझे अभी भी याद है। एक बहुत सुंदर सुंदर बगीचा है, एकदम कहते हैं ना ग्रीन गार्डन, जैसे ग्रीन चादर बिछी हुई हो, एकदम बहुत बड़ा सुंदर सुंदर बगीचा, बहुत दूर दूर तक वो ग्रीन गार्डन बना हुआ है, और बड़े दूर दूर से मैं देखती हूँ इतना छोटा मिचनू श्री कृष्ण, जैसे कोई 4-5 बरस का हो, ऐसा छोटा वो नाचता 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 सामने से मेरे पास में आ रहा था। जब वो सामने आके मेरे पहुंचा तो उसी मिनट में मैंने देखा उसी के पीछे में एक बहुत सुंदर सफेद वेशधारी मूर्ति खड़ी। वो कौन था मैंने देखा था, मैं जानती नहीं थी। तो क्या हुआ कि जैसा ही मैं उस श्री कृष्ण को बड़े प्यार से देख ही रही थी, वो खींच ही रहा था, तो इतने में जो मैंने वो फरिश्ता देखा तो मेरी अटेंशन एकदम उस फरिश्ते के तरफ चली गई, और वो इतना मीठा रूप में सफेद सफेद जैसा कोई रुई का कोई फरिश्ता हो ऐसे मैंने देखा। और बस देखते 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 वो पीछे पीछे हटता गया और मेरे से गायब हो गया। कौन था ये मुझे पता। इतने में मैं जाग गई। तो वो जो कभी नहीं वो सुपन आता जो जैसा दर्श था वो सारा दिन मेरे घड़ी घड़ी मेरे पास में वो याद आता रहता था। दिल कहती कि फिर मैं वो देखूं, फिर वो मैं सुपन देखूं, फिर वो दर्श देखूं। तो वो चाहे वो श्री कृष्ण, चाहे वो सुंदर बगीचा, चाहे वो फरिश्ता, मेरे आंखों के सामने नाचता रहता था। अब कैसे आएगा ये तो कोई मेरी बात नहीं। खैर दो तीन दिन हुआ तो मेरा ख्याल है छुट्टियों का ही दिन है, दो तीन दिन की बात है। तो मेरे को कोई फ्रेंड ने बुलाया कि छुट्टियां थी तो मेरे पास में आना। और वो फ्रेंड जो थी मेरी क्लास फेलो थी, वो कोई थोड़ा दिन हुआ था कि बाबा के सत्संग में गई थी
ओ मंडली में।
मुझे पता नहीं था अभी बाबा ने कोई छोटे स्थान पर सत्संग शुरू किया था। तो मैं उनके पास में शाम का टाइम था, नमा शाम का टाइम, मैं जब उसके पास गई तो वो ध्यान में बैठी थी और उनके आंखों में से भरे प्रेम के नीर बह रहे थे, बड़े मीठे रूप में बैठी थी। पर मुझे पता नहीं था तो मैं उनको कहती थी लीला लीला लीला, वो जवाब नहीं दे रहे। तो मैंने उनके मम्मी को कहा कि उसको क्या हुआ है, ये जवाब नहीं देती है, आंसू बहा रही है, क्या हुआ है। तो मम्मी ने कहा पता नहीं इनको क्या हुआ है, और जब देखो तब बस ऐसे रोती रहती है और मालूम नहीं इधर एक दादा सत्संग करता है क्या हुआ है, और तुम उठाओ उसको। जैसे उसकी माँ भी वो घड़ी गई। फिर थोड़ी घड़ी के बाद जागी तो बहुत वो मीठा मुझे देखती रही, परंतु जैसे वो छोटे बच्चों होते हैं ना मजाक करते हैं तो मैं उनसे मजाक करने लगी। तो वो परंतु फिर भी वो शांत से मुझे देखती रही। तो कहती है कि चलो मैं तुमको कृष्ण के पास ले चलूं। मैं कहा चल कृष्ण के पास चलेंगे। कहा नहीं तुम कृष्ण देखेंगी, तुम चलो मैं तुम्हें कृष्ण के पास ले चलूं, मैं तुम्हें कृष्ण दिखाऊं। तो थोड़ी जैसे बच्चे मजाक करते हैं, फिर बात से बात मैंने कहा अच्छा कहाँ चले किधर चले कैसे देखेंगी। तो कहा इधर दादा एक सत्संग करता है, उसके सत्संग में जाने से कृष्ण देखेंगे और तुम चलो मैं तुमको लेके चलू। तो मैंने कहा अच्छा, विश्वास तो थोड़ा नहीं हो रहा था। मैंने कहा अच्छा, और उस टाइम तो हम लोग तो माँ बाप के अंदर रहते, छुट्टी के बगैर कहाँ निकलना नहीं। मैंने कहा अच्छा, और पिताजी से पूछेंगे, अगर माँ ने छुट्टी दिया तो आ जाऊंगी। अब बात इसीलिए बताती। तो मैं शाम को घर आई, रात के टाइम भोजन कर रहे थे तो लौकिक बाप ने लौकिक माँ को अब ही कहा कि बेटी को छुट्टियां है और दादा यहाँ गीता पर बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, वहाँ महिलाएं जाती है और इसको छुट्टी है, तू उनको लेके क्यों नहीं जाती उसी सत्संग में। तो मैंने कहा कौन सा सत्संग। कहा इधर दादा सत्संग करता है और वो गीता पर बहुत अच्छा सत्संग करता है और तुम्हें छुट्टी है, तुम जा करके सुनो। कोशिश करके वो सत्संगों में भेजने का हमेशा ध्यान रखता। तो मैंने कहा वो दादा तो मैं आज लीला के पास गई थी, उसने आप मुझे भी कहा अगर आप कहें और लौकिक माँ चले तो मैं भले, नहीं तो मुझे छुट्टी हो तो मैं जाऊं। कहा तू जा। तो क्या हुआ उस टाइम बाबा सत्संग करता था 10 से 11 बजे सुबह को, क्योंकि माताओं का था ना तो सब मर्द लोग तो दफ्तर चले जाते तो 10 से 11 बजे सत्संग होता था, क्योंकि उस टाइम तो सब माताएं फ्री होती है। तो मैं गई उसी सत्संग में। अब वही 2 मिनट था जब मैं वहां जाके सत्संग में बैठी तो मैं वही देख रही थी कि ये तो वही है जो 2-3 दिन पहले मेरे सपने में आया, आखिर ये है कौन। मैं देखती रही बिल्कुल मेरे सामने वही फरिश्ता, वही लाइट, वही फिर बगीचा, वही श्री कृष्ण। बस मैं तो वहां बैठते ही शायद 2-3 मिनट भी नहीं बिताऊंगा, मैं तो गुम हो गई। मैं वो ही सीन देखी जो मैंने 2-3 दिन पहले सवेरे सवेरे देखी। बस मैं वहां बैठी खो गई, मुझे कुछ पता नहीं पड़ा। और इतने में सत्संग पूरा हुआ, सब लोग उठ गए। तो क्या हुआ, मैं जागूं तो कोई नहीं है, मैं अकेली बैठी हूँ और मुझे बड़ी आंसू आ रही है। मुझे जरा लगा कि क्या हुआ, मैं उठी तो मैं चुप करके जाने लगी। तो बाबा, उस टाइम 2 कमरे होते थे, एक में सत्संग, दूसरे में बाबा सत्संग के बाद जाके दूसरे कमरे में बैठते थे, कुछ खड़े थे कुछ गए थे। तो मैं जाने लगी और सोचती थी जिस मुझे सहेली ने लाया वो पता नहीं कहाँ, परंतु मैं चुप करके जाने लगी। तो मुझे बाबा ने बुलाया, मन भी होवे कि मैं बाबा के पास जाऊं, क्यों मुझे तो वो फरिश्ता दिखाई पड़ रहा था ना। लेकिन बाबा बुजुर्ग हो, हम छोटे बच्चे, तो लज्जा भी होवे, सामने कैसे जाऊं। लेकिन फिर बाबा ने बुलाया, मैं धीरे 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 आगे गई। तो बाबा पूछा किया, वो फिर ऐसे पूछा किया होगा। तो बस इतनी मेरी कहानी है, वो दिन और ये दिन हम तो बाबा के पास हूँ, और फिर वो दिन ही नहीं आया जो हम कभी घर में रहे। बस पहले तो थोड़ा टाइम हम क्लासेस में आती रहती थी, करीब 6-8 मास होगा। फिर तो बाबा ने अनायसे बच्चों की बोर्डिंग रखी, तो बोर्डिंग लगी तो बाबा ने तो ऐसे ही निमित्त कहा कि इन बोर्डिंग को संभालने वाली कौन टीचर्स तैयार होती, कुमारियां। तो हमें याद है हम पहले पहले संन्यास जो किया, मम्मा भी पीछे किया, हम पहले पहले संन्यास की भावना नहीं थी, परंतु हम बोर्डिंग चलाने के लिए, सेवा के लिए टीचर्स जाती है। तो हम 5 बहनें थी जिन्हों को बाबा नाम देता था 5 चिड़िया। उसमें से एक शांतामणि दादी, एक चंद्रमणि दादी, एक मिठू दादी, एक मैं, और एक शांतामणि की दूसरी भी बहन थी, वो तो चली गई, लेकिन 4 साबित है। उन्होंने ये पहली पहली सेवा शुरू की, उसके बाद रामानुसार सब संन्यास करते आते गए। वो दिन ये दिन हम तो बाबा के यज्ञ में। ये तो शुरू से ही नियम है कि अपने यज्ञ का, वो बिल्कुल पहले दिन से ही, जब ये बोर्डिंग भी शुरू हुई पहले भी, एकदम ये शुरू का नियम है कि माँ बाप की छुट्टी से ही आना है। तो बाबा ने कहा छुट्टी लियो, अब छुट्टी ऐसे चिट्ठी लिख के दिएंगे, अब भला नहीं बात है कैसे। तो जा करके लौकिक बाप को कहा कि दादा ने ये शुरू करते हैं और उसके सेवा के लिए आप मुझे चिट्ठी लिख करके दियो। तो उसने तुरंत ही चिट्ठी लिख करके दी कि इस लौकिक बेटी को, लौकिक तो अभी शब्द कहते हैं, बेटी को हम श्री कृष्ण अर्पण करते हैं, उसकी जय सेवा। क्यों, इतनी बात जरूर है कि मुझे इतना याद है कि वो लौकिक बाप जन्म पत्री जानता था ना, तो वो जन्म पत्री से ही छोटेपन में ही कहते थे कि ये तो मीरा बनेगी, शादी नहीं करेंगी, वो जन्म पत्री से ही जानते थे।
सिंध में तो नामी ग्रामी बाबा गिना जाते रहे, और जो लोक परिवार थे तो उन्हों का उन्हों से कनेक्शन था, वो भी नामी ग्रामी रहे, तो इन दोनों के लेन देन का कनेक्शन रहते हैं। और हमारे साथ जो आनंद किशोर भाई बैठे हैं तो वो भी हमारा लौकिक में देवर का गिना जाता है, तो लौकिक रीति में भी कनेक्शन भी था और आकर्षण भी रही। आप कहेंगे लौकिक रीति में कनेक्शन तो रहा, आकर्षण क्यों रही, ये फिर बाद में ही कहा, क्योंकि बाबा का जो भक्तिपन के संस्कार थे वो एक नामी ग्रामी गिना जाता था, भगत तो बहुत ही है, तो इसके लिए आकर्षण रही। लौकिक माँ कहती थी मेरे बच्चों की लेन देन वहां होए, ये एक उनकी अंदर की दिल रही। खैर,
लौकिक माँ देखी है नीचे क्वीन मदर बुढ़री,
क्योंकि वो ही मेरे को लेकर के चली थी, दोनों का ही निमित्त रखेंगे नहीं, तो जब उनकी ये भावना रही, लेकिन भावना कुछ बदल करके दूसरा रूप दिखलाया और फिर आखिरी दोनों की मन की सर्व कामनाएं पूर्ण हुई, तो खुद भी यहाँ है। खैर इसके तो लंबाई चौड़ाई में नहीं जाते हैं, लेकिन एक बारी क्या हुआ तो ये खुद तो बहुत ही नजदीक थी उनके संबंध में और मिलती जुलती रही थी, तो एक बारी कार में थी, कार उन दिनों में बड़ी नई बात थी, तो कार में जा करके वो ही छोटा सा कमरा था और बाबा हाथ में गीता उठा करके और ओम की धुनी लगाते थे। तो पहले दिन जब ये गई तो इनको बड़ा अच्छा लगा, जरा वो उन दिनों में बहुत अमीरी होते और नामी ग्रामी होते, लेकिन मन का दुख लगा क्योंकि उनका लौकिक पति ने गुजर कर दिया, खत्म हो गया, तो इसके लिए कहाँ कहाँ इधर उधर जाती थी तो समझती थी ये भी खुशी लेवे, क्योंकि मित्र संबंधियों के साथ रहने में थोड़ा वो दुख का अंश मेरे पास भी रहा, बाकी तो देखे तो हर प्रकार से सुख था। और बाकी कोई भक्ति के भी संस्कार जो बड़ों को देखते थे नहीं, तो फिर ऐसे ही करते थे, दान पुण्य तीर्थ वृत्त नियम और गीता भागवत से अति प्यार था, यानी इनकी क्या गति होगी पढ़ने से क्या होगा, लेकिन एक भागवत में जो गोपियों की कहानी थी नहीं, वो बड़ी मीठी लगती थी। हर रोज वो जैसे कि मेरा एक नियम था पढ़ने का, और ये अंदर था तो मैं भी उन गोपियों को देखती थी, नाम तो मेरा गोपी था, तो मैं उन गोपियों को, कृष्ण के तरफ तो इतनी हिम्मत नहीं रही तो कृष्ण देखे, लेकिन गोपी के नाम से सदा भागवत पढ़ती थी, तो वो कृष्ण की लीला पढ़ करके आंखों में से आंसू आता था और वो बड़े प्यारे लगते थे। और गीता भी कई बारी पढ़ी, परंतु कुछ समझा तो नहीं, लेकिन उसके पिछाड़ी कुछ उनका थोड़ा फल का लिखा होता है ना, ये पढ़ने से ये फल मिलेगा, ये पढ़ने से ये फल मिलेगा, खैर ये भी एक खेल बजाया किया। बाकी जो कृष्ण की और गोपियों की, वो जैसे कि अंदर कुछ लगन रही, तो मैं उनको देखती थी कैसे कृष्ण से मिलती थी सिर्फ देखने के। खैर एक दिन तो वो जो इलोकिक माता गई थी तो दूसरे दिन मेरे को वहां पहुंच करके और कार भेजी, और बड़ा नजदीक था तो मैं भी गई। जाते ही दादा को तो कई बारी देखा भी था, लेकिन कई बारी देखते हुए सिर्फ वो प्यारा लगता था, नहीं तो हिंदू नारी के लिए कोई पुरुष के तरफ दृष्टि भी नहीं जाए, तो दृष्टि नहीं थी। और मैं तो कभी बिल्कुल पिछला जमाना भी ऐसा था और कुछ संस्कार भी ऐसे थे, क्योंकि ऊंचे घर में पालना रही तो नजरदारी, जैसे दादी जी ने कहा नहीं तो बाप के बिगर छुट्टी नहीं निकलते थे, तो ऐसे ही बंधन भी रहता था, बंधन नहीं होता था उस दिनों में, सेफ्टी समझते थे और प्यार समझते थे। तो ऐसे ही हम वहां पर जब बाबा के पास पहुंची तो सामने जाते ही बैठते ही बाबा की दृष्टि मेरे तरफ और मेरी दृष्टि बाबा की तरफ, तो ऐसे भी नहीं कहेंगी तो हम ध्यान में गई, दिव्य दृष्टि में गई, लेकिन देखते ही यहाँ पर जो चक्कर रहा ना, एक लाइट का चक्कर इतना गोल यहाँ पर हमने देखा, मेरी दृष्टि वहां ही रही और बाबा समझता शायद ये ध्यान में गई है, परंतु मैं सुन भी रही हूं, लेकिन सुना तो वो बुद्धि में गीता क्या समझेंगे। बाकी लास्ट जब ही बाबा की ओम की धुनी रही तो जैसे कि हम उस लव में लीन अथवा खोई गई, जो आवाज था, जो रस था, अर्थ नहीं समझा, और लाइट का पूरा ही समय, अभी तो एक सेकंड देखे नहीं लेकिन पूरा ही समय जैसे कि मैंने लाइट देखी, तो उस समय मेरे को यही अंदर आया, यानी कोई सज सजाया कृष्ण नहीं देखा, लेकिन मुझे कृष्ण की भासना आई, तो ये कृष्ण है, यही कृष्ण है। तो बाबा ने कहा तो सुना सत्संग, मैंने कहा सत्संग सुनते लेकिन एक मेरा प्रश्न जरूर है। बाबा ने कहा क्या? मैंने कहा स्त्री को तो कोई गुरु करने का अधिकार नहीं है, कहा मैंने तो सुना ही नहीं तो गुरु करो, बात तो बरोबर थी, लेकिन मैंने समझा बन बनाया बैठा हुआ है, गीता कहानी सुना रहे हैं, जहां चाहिए जहां जाते हैं तो गुरु ही देखते हैं। तो बाबा ने तो फट जवाब भी दे दिया, मैंने कहा नहीं परंतु गुरु करने का कहने अधिकारी नहीं। तो बाबा से प्रश्न पूछ करके रेस्पॉन्स तो मिला, मैंने कहा अभी मैं कुछ ज्यादा समझनी चाहती हूँ। वास्तव में कहा समझना, लेकिन क्या कहे, शब्द तो स्थूल हो जाएगा लेकिन पसंद पड़ गया, समझा? तो इनको देखी देखती रहूं, क्योंकि कृष्ण की भावना रही नहीं, और जैसे कि आकर्षण ने आकर्षित कर दिया। और पहले दिन दिल नहीं होवे तो जाएं, खैर जाना तो पड़ा। बाबा ने कहा, बाबा तो सब जानते थे नहीं, बाबा ने कहा कल फिर ओम मंडली में आना। वो था स्थान दूसरा, जहां पर बाबा एक कमरे में गीता, छोटा कमरा था, गीता सुनाते थे। तो बाबा का वो दूसरा ओम मंडली अभी नाम नहीं पड़ा था, जसोता निवास, क्योंकि बाबा की लोक जो थी नहीं उसके नाम पर वो स्थान था। तो कल आप जसोता निवास में आएंगे? मैंने कहा हाँ। तो टाइम दिया और मैं गई, तो जाते ही बाबा तो तैयार था, जसोता मैया सवेली उठते थे तो तैयार था, और आसन भी लगा हुआ था, तो मैं भी जा करके बैठी। तो उस दिनों में कोई प्लान नक्शा बक्शा नहीं था, एक बाबा ने पेंसिल से निकाला, एक देवलोक, एक मृत्युलोक, एक पाताल लोक, बैठ करके मेरे को समझाया। लेकिन सुनते भी सुना नहीं, बिल्कुल जैसे कि कृष्ण ही देखने में आए, इतनी रही आकर्षण।